I know the mic is on. Relax. Hi everyone and welcome to the Saturday evening live stream. ये live stream होता है हर Saturday 8 बजे और हम आमतौर पे callers लेते हैं या chat को पढ़ते हैं. But आज we have a special guest who is yet to arrive. I hope she'll get here in a few minutes. Until then, मैं कुछ चीजें clear कर देना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि ये live stream monetized है. अगर आप इस show को support करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. यहाँ टिकर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे आप या तो पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/vimo पे, या तो यूट्यूब चैनल के मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं. और उसके लिए आपको दबाना होगा नीचे जो ज्वाइन बटन है उसको. हर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है और मेन पेज पर भी ज्वाइन बटन है. और इसके अलावा आप UPI पे पैसे भेज सकते हैं vimo@upi को. और मेरी वेबसाइट www.vimo.in पे एक सपोर्ट बटन भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, इट्स अ वन टाइम पेमेंट थिंग. सेकेंडली, आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमें बात करनी है डॉक्टर रुचिका शर्मा से, जो है कि इतिहासकार हैं, और हम बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे. मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से कहा था कुछ सवाल पूछने को, और मैंने मेंबर्स से अलग से पूछे थे कुछ सवाल बताने को. आप सबने बहुत सारे सवाल भेजे, उसके लिए थैंक यू. आपके सवालों में काफ़ी ओवरलैप था, और इसका मतलब यह है कि आप में से कई लोगों ने एक ही जैसे सवाल पूछे थे. तो मैंने आपके सवालों की लिस्ट यहाँ नोटबुक में बना रखी है. सारे सवालों को कंडेंस करने के बाद लगभग 7 या 8 सवाल बने जो मैं डॉक्टर रुचिका से पूछूंगा, और उम्मीद है हमको जवाब मिलेगा. देर वर सम क्वेश्चंस जिनका कि कोई संपर्क ही नहीं था इस टॉपिक के साथ, और उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ कम से कम इस समय, क्योंकि लाइव स्ट्रीम एक लिमिटेड टाइम तक होती है और सारे सवाल पूछना मुश्किल होता है. और उन सवालों का जवाब जानने के लिए आप डॉक्टर रुचिका शर्मा की जो यूट्यूब चैनल है आई शैडो एंड इतिहास, उस पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर फिर कभी मौका मिला उनसे बात करने को तभी पूछेंगे, पर आज के सवालों को इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही सीमित रखते हैं. आपके जितने सवाल थे इंडस वैली को लेकर मैंने कंसोलिडेट कर दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन बन गए हैं. डॉक्टर रुचिका के आते ही हम लोग बातचीत शुरू करेंगे. अच्छा, सो अंटिल शी अराइव्स लेट मी टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स व्हिच हैव टू डू विद द टॉपिक ऑफ टुडे. सो मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. जय साई दीपक के बारे में क्यों बातचीत हो रही है, कुछ हुआ था क्या ट्विटर पे? मैं ट्विटर पे हूं नहीं, मुझे पता नहीं क्या चलता रहता उधर. विनय चितोरा, थैंक यू फॉर द 100 rupees. 2 ऑफ माई फेवरेट पीपल ऑन द इंटरनेट. अभी तो 1 ही है, क्या पता 2 वाले जो पर्सन है वो आए नहीं, देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर धीरू भाई, वंस अगेन appreciated everyone. This is how you become a member and support the channel. गौरव आस्क्स, हे विमो सर, क्या कल्प विग्रह जो कि पीतल की छोटी सी मूर्ति है वो सच में लाखों साल पुरानी है, जैसा कि हिंदू क्लेम करते हैं कि ये कार्बन डेटिंग से प्रूव हुआ है कि इतनी पुरानी है? देखो, कल्प विग्रह का यह है कि मैंने इसको पर रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे वैसा ढंग का कुछ मिला नहीं. मतलब जो कहानियाँ उसके बारे में सुनाई जाती हैं कि एक चाइनीज मंक के पास था, एक टिबेटन मंक के पास था, उसने किसी आर्मी के सोल्जर को दी, फिर वो CIA के पास गया, इसका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन एक्चुअली मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पीतल की हो सकती है क्या? सोच के देखो, हम लोग जो कार्बन डेटिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल की करते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना था कि वो जो कल्प विग्रह मूर्ति है वो एक लकड़ी के डब्बे में मिली है, हो सकता है उस डब्बे की डेटिंग हुई हो, क्योंकि डब्बा लकड़ी का बना है और वो ऑर्गेनिक मटेरियल का है, तो हो सकता है वो डब्बा उतना साल पुराना हो। पर डब्बे का उतना पुराना होना इस बात को साबित नहीं करता कि उस डब्बे के अंदर जो चीज़ है वो भी उतनी पुरानी है। आप एक नई चीज़ को एक पुराने डब्बे में रख सकते हैं, राइट? आमतौर पर जो कार्बन डेटिंग होती है वो होती है फॉसिल्स की, मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी ऑर्गेनिक हुआ करती थी। लकड़ी ऑर्गेनिक है क्योंकि वो एक पेड़ से ही है, पीतल ऑर्गेनिक नहीं है, सो आई एम नॉट इवन श्योर इफ इट कैन बी डेटेड दैट वे। और ये कहना कि हिंदू क्लेम करते हैं ये भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू क्लेम नहीं करते हैं, बहुत सारे हिंदू के दिमाग अभी तक खराब नहीं हुए हैं। कुछ लोग इंटरनेट पर अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें बोलते रहते हैं, और उसका कुछ और ही मतलब उसका गोल कुछ और ही है, उसका गोल है व्यूज पाना वगैरह, मतलब अपने धर्म अपने कल्चर को डब्बे में भर के विदेशियों की आईबॉल्स के लिए बेच रहे हैं हम, और ये मुझे बहुत ही रिपग्नेंट लगता है। पर इसको एक ओवरऑल पैटर्न समझना मेरी नज़र में भूल है। मैं किसी भी रेप्यूटेड हिस्टोरिकल सोर्स को नहीं जानता जहाँ पे कल्प विग्रह के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये बस कॉन्स्पिरसी थियरी वेबसाइट्स पे ही मिली है और कहीं नहीं मिली है। नो नेम सेज भाई हिंदी में करो, हाँ लाइव स्ट्रीम हिंदी में ही होगा, पर अगर इंग्लिश के सब शब्द सेंटेंस वगैरह आए हैं तो टेंशन मत लो, कभी कभी होता है लाइफ में डील करना पड़ता है इंग्लिश के साथ। हेमंत सेज आई फील अ डिबेट बिटवीन यू एंड सदगुरु वुड बी ग्रेट टू हियर, आई एम श्योर इट विल, अनफॉर्चुनेटली सदगुरु डज नॉट डिबेट। ओके, आवर गेस्ट इज हियर, लेट अस हैव हर ऑन स्क्रीन।
हाय, सो सॉरी आई एम लेट। हाय,
यू आर नॉट दैट लेट। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपके साथ बात करनी थी। आई हाउ मच टाइम डू यू हैव? यू लाइक वी यूजुअली डू इट फॉर अ लिटिल ओवर 1 hour, इज दैट ओके?
या दैट्स फाइन विद मी।
कूल, सो आई हैड आस्क्ड पीपल फॉर क्वेश्चंस, और आज का स्ट्रीम अगेन मैं भूल रहा हूँ बार बार, मुझे हिंदी में करनी है। मैंने लोगों से पूछा था सवाल पूछने के लिए, और लोगों ने काफी सारे सवाल भेजे थे, मैंने उनको कंसोलिडेट करके 7-8 सवाल निकाले हैं। वो 7-8 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और उसके बाद हम लोग चैट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कूल,
परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट।
कूल, सो डॉक्टर प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, योर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एवरीथिंग।
सॉरी, सो मैं हिंदी बोलूं इंग्लिश में?
हिंदी।
तो मैं डॉक्टर रुचिका शर्मा हूँ, और मैं डॉक्टरेट हूँ हिस्ट्री में, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, द फेमस वन। एंड उससे पहले मैंने अपनी एमफिल की है, तो मेरी एमफिल और पीएचडी दोनों आर्किटेक्चर पे है, दैट्स माय एक्सपर्टीज एक्चुअली, आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया। तो मेरी पीएचडी मांडू पे है, मांडू मध्य प्रदेश, अर्बन स्पेस इन मांडू, और मेरी एमफिल है कर्नाटका, बीजापुर। एंड मेरी मास्टर्स है हिस्ट्री में विद स्पेशलाइजेशन इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, बट आर्कियोलॉजी इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि एमफिल में मेरी मेथोडोलॉजी जो थी वो थी समथिंग कॉल्ड एज बिल्डिंग्स आर्कियोलॉजी, विच इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी जो यूज होती है हिस्ट्री में। तो वन ऑफ माई गाइड्स ऑल्सो फॉर माई एमफिल वॉज एन आर्कियोलॉजी। So archaeology is also something which, and I've attended, you know, the Rakhigarhi excavation, I've attended Karanpura excavation, etc. So I've learned a decent amount of archaeology as part of my academia in JNU. So, I'm hoping everybody knows I do a lot on public history. Mere apna channel hai, Eyeshadow and Itihas. There is a series that I do, History Clinic. Instagram पे भी I make bite-sized videos, Twitter पे भी, so that's about me.
Okay, so Dr. रुचिका शर्मा का YouTube channel है Eyeshadow and इतिहास, मैं उसका link इस video के नीचे live stream खत्म होने के बाद डाल दूंगा, आप लोग definitely उसको subscribe करें। अगर आप में से कोई लोग impatient है तो अभी जाके subscribe कर सकते हो, पर फिर लौट के आना इसको देखने के लिए। So मैंने आपका Indus Valley Civilization पे जो video था वो देखा, मल्टीपल वीडियोज हैं इनफैक्ट आपके, और आपने ऐसी कई गलत धारणाओं के बारे में बात की है जो लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। मेरा पहला सवाल डायरेक्ट नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग कई बार लोगों से सुनते हैं, कम से कम जो संघी इतिहास प्रिटेंडर्स होते हैं उनसे, कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताया नहीं जाता। तो क्या ये किस हद तक सच है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कॉमन नॉलेज कई चीजें नहीं है? क्या ये हैं और लोग प्रिटेंड करते हैं कि नहीं है, या इसके बारे में सचमुच ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिक नॉलेज नहीं है?
बहुत कुछ है पब्लिक नॉलेज में, स्कूल्स में बहुत पढ़ाया जाता है, सिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है, आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे पता है अभी एनसीईआरटी का सिलेबस सिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है प्रॉपरली। फिर उसके बाद अगर यू नो इफ यू लाइक मी ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज इन स्कूल, देर इज अ प्रॉपर चैप्टर यू नो इन 11th इन 12th क्लास टेक्स्ट बुक्स वेयर यू नो यू टॉट इन वेरी डिटेल एज टू नॉट ओनली कि कैसे क्या क्या मिला बट ऑल्सो कैसे ढूंढा गया, तो आर्क्योलॉजी कैसे करते हैं वो भी उस चैप्टर में सिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक डोमेन में कम नॉलेज है, मुझे लगता है इनफैक्ट एज कंपेयर टू अदर पीरियड्स इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, यू नो। तो एंड सबको पता है, यू नो आई थिंक ऑल किड्स हु गो थ्रू 6th-7th क्लास इन इंडिया वुड नो अबाउट कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, स्टैंडर्डाइजेशन थी ब्रिक्स में, ये सारे जो मिथ्स हैं, मे बी मिथ्स आते होंगे बट नॉलेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि यू नो हो सकता है फ्लड से खत्म हो गई हो सकता है डिफॉरेस्टेशन से खत्म हो गई हो, सो मच दैट पीपल एक्चुअली नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुझे नहीं लगता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सफर्स फ्रॉम सम इग्नोरेंस इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ऐसा नहीं है।
मुझे लगता है कई लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका जो इंटरप्रिटेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कॉमन नॉलेज नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सच नहीं है और उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है।
हाँ, और ये आइडिया भी है कि जो भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं दैट डज नॉट समहाउ इंस्टिल अ प्राइड, व्हिच आई थिंक इज सो रिडिकुलस। मुझे बहुत प्राइड महसूस होता है दैट यू नो इतनी बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम्स थी, यू नो स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर 2:4 का रेशियो फॉलो हो रहा है ब्रिक्स में, पहले टाउन प्लानिंग हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है, फिर उसके बाद आप यू नो बिल्डिंग कर रहे हो, सो दिस एक्चुअली शोज द अमाउंट ऑफ ब्रेन्स दैट वाज यू नो देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हो रहा है, ओमान यू नो ये सब जगहों के साथ ट्रेड हो रहा है, तो आई फील लॉट ऑफ प्राइड इन दिस। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी से आता है कि जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल्स में वो somehow इन लोगों को पता नहीं क्यों prideful नहीं लगता, तो ये इनकी problem है, you know they are probably ashamed of the kind of academic history that is out there in India, but we are not. I think it's great. All of that is something to be proud of.
So going off that, Indus Valley civilization के contemporary दूसरी civilizations कौन सी थी और हमें उनके relationships के बारे में क्या क्या पता है clearly? और इवन इफ इट इज नॉट क्लियरली क्या क्या पता है हमें?
तो दो था, देयर वर ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद यू नो टू सर्टेन सिविलाइजेशंस, ऑल्दो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन तीन है, सो यू हैव द चाइनीज सिविलाइजेशन, देन यू हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंड देन यू हैव मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंड देन द फोर्थ वन इज इंडस वैली, सो दे आर ऑल कंटेम्पररीज but okay. they had trade relations mostly with the western civilization. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ certainly है. How do we know this? We know this because जो हमें निकल मिला है, you know, खुदाई में हड़प्पा में, उसमें जो कॉपर की ट्रेसेस है वो सिमिलर है जो ओमान में मिले हैं, and then we also know of names जो मेसोपोटामिया में you know इस पर्टिकुलर एरिया को दिए गए हैं, इट्स कॉल्ड मिल्युहा, राइट? सो वी नो दैट मिल्युहा Harappan civilization. Then they have names for others like Dilmun and Magan, which is Oman and Bahrain respectively. So we know ki inke beech mein kuch na kuch trade you know relations to the and you know jo sealings mili hai, we know that apart from agriculture Indus Valley civilization jo tha trade pe heavily dependent tha. You know ek bahut heavy dependence thi kyunki sealings में बहुत कुछ ऐसा मिलता है, टाइनी सीलिंग्स, उस पे लिखा होगा पॉसिबली जब हम डिकोड कर लेंगे इन द स्क्रिप्ट या जो भी इट्स अ सिस्टम ऑफ नोटेशन, उस पे अलग से बहस हो सकती है, पर जब भी हमको पता लग जाएगा उस पे क्या लिखा हुआ है, वी ऑल गोइंग टू फाइंड कि वहां पर नाम लिखा हुआ है, क्या गुड ट्रेड हो रहा है, कितना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है और कहाँ ट्रेड हो रहा है. सो वील प्रोबेबली नो कि उनके ट्रेड रिलेशन और कहाँ कहाँ थे, बट वी सर्टनली नो कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन से तो काफी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे उनके. यू नो वी के नॉट डिनाई दैट. हमारे पास वो ट्रेसेस भी हैं कॉपर के, एंड प्लस वी हैव यू नो दिस नेम दैट द मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन गेव टू हरप्पन सिविलाइजेशन.
So the name Meluha was given by the Mesopotamians to Indus Valley civilization, to Harappa specifically.
We also, by the
So
way, another common thing, I'm sorry, I'm interrupting you, but एक
it's
और
okay.
चीज जो कॉमन है वो है कि a lot of the people, or the things that they seem to worship, जैसे कि there is a lot of nature worship. तो अगर आप मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन देखो तो यू हैव गॉड्स लाइक अनु, एनलिल, एंकी, ये सब गॉड्स के नाम एपिक ऑफ गिलगमेश में लिखे गए हैं. And they are all, representing certain aspects of nature. Somebody is the god of water, somebody is the god of earth, and ye nature worship, although again we don't know if they're worshipping water specifically or whatever, but we do know that they're doing nature worship, क्योंकि उनकी सीलिंग्स पे ये डिपिक्टेड है. दे डिपिक्ट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, दे डिपिक्ट पीपल कमिंग आउट ऑफ एनिमल्स, कमिंग आउट ऑफ ट्रीज एटसेट्रा, हाफ एनिमल हाफ पर्सन, सो वी नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नेचर वर्शिप दैट इज हैपनिंग एंड इट्स कॉमन बिटवीन दीज टू सिविलाइजेशंस.
Okay, since we are already touching on religion, let me go to that question. First of all, very simply, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन था? क्या वो लोग किन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे? क्या उनके देवी देवता थे? इसके बारे में हमें क्लियरली क्या पता है?
सो जब हम रिलीजन बोलते हैं हम ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज रिलीजन के बारे में सोचते हैं,
हाँ
जिसका आई डोंट थिंक हरप्पन सिविलाइजेशन में कोई एविडेंस मिला है. कि ऑर्गेनाइज रिलीजन इज से फॉर एग्जाम्पल इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, वैदिक रिलीजन हो गया, पौराणिक रिलीजन हो गया, देर इज अ कैनन जिसपे सब कुछ रिवॉल्व करता है, कैनोनिकल होता है. जैसे पुराण कैनन हो गया या वेदास कैनन हो गए, इस्लाम में कुरान एक कैनन है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ऐसा हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं है, बट दे आर सर्टनली वर्शिपिंग थिंग्स और एंटिटीज. देर टू काइंड ऑफ वेज इन विच दे डू दिस. एक तो है कि दे आर सर्टनली वर्शिपिंग नेचर, तो देर इज अ ट्री गॉडेस सील, जहां पर ट्री में से यू कैन सी पर्सन एमिनेटिंग. दे हैव कॉल्ड इट गॉडेस, ऑल्दो वहां पर कोई ऐसे स्पेसिफिक सेक्सुअल मार्कर्स नहीं है जिससे हम बोल सके कि ये गॉड है या गॉडेस है, सो ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन यू हैव अनदर सॉर्ट ऑफ दिस सीलिंग, जहां पर देर आर टू पीपल who are spearing each other, and उनके बीच में there is a figure standing, and she, is or he is holding these, two people in order to sort of make them fight. So possibly, worshipping somebody who could be, god or goddess of war, somebody who could be, worshipping a particular sacred tree. Then animistic cults ho sakte hain, because we have found a lot of animal figurines, especially bull. There is an inordinate amount of bull figurines that we have found. Uske do reasons ho sakte hain. Ek to ho sakta hai, there is a religious thing, could be a bull cult. But the other also could be because a lot of the Indus Valley civilization was driven by bull carts. Bull carts ki bhi utni hi, figurines hai. So possibly bull was, economically a very important animal. And therefore, ho bhi sakta hai, usse, the worship starts ki economically hamare liye bahut important hai, toh we're going to worship it, right? Jaise cows ki shuru mein worship hoti hai, because it's economically for the Aryans very important. Animal husbandry karte hain, so on and so forth. मिल्क मिलता है, लेदर एक्सेट्रा. तो सिमिलरली फॉर बुल एज वेल, तो हो सकता है दैट कुड बी वन ऑफ द वेज इन विच बुल बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड रिलीजियस एंटिटी. देन द अदर इज देर इज अ शमानिक कल्ट, एंड आई एम गोइंग टू गो बैक टू दिस वेरी फेमस फिगरीन कॉल्ड पॉपुलरली कॉल्ड पशुपति सील, बट एक्चुअली इट्स सील 420. एंड सील 420 में देर इज अ सीटेड फिगर, yogic seated figure, एंड उसके आसपास में से चार एनिमल्स है, देर इज वाटर बफलो, देर इज अ टाइगर, देर इज अ बुल, यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ऊपर में कुछ एक लाइन में एटलीस्ट 7 लेटर्स की एक लाइन है, कुछ लिखा हुआ है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू थिंक शिव है, विच मेक्स नो सेंस. इतना पेपर्स इसके बारे में लिखे हुए हैं, यू नो देर इज नॉट जस्ट वन पर्सन, यू नो वॉट इज, मुझे इसीलिए, यू नो दिस इज वॉट
वो मेरा
गेट्स माई
था, वो
गोट.
मेरा अगला अगला सवाल था, पर हाँ अब
अगला आपका
बोलिए।
सवाल था, हाँ, तो मैं उस पर डिटेल
हाँ
में बाद में आ जाऊंगी, बट मैं आई जस्ट वांट टू ब्रीफली टच ऑन दिस. सिर्फ एक इंसान ने बोला है कि वहां शिव है, दैट इज अ कॉलोनियल सर्वे कॉल्ड जॉन मार्शल. इसके
मार्शल
बाद से सारे एकेडमिक हिस्टोरियंस बोलते हैं शिव नहीं है, बट व्हाट हैज गॉट ऑन टू पॉपुलर मेमोरी इज कि शिव है. तो जॉन मार्शल बोल के चले गए, लोगों ने भूला नहीं. तो एनीवे, तो वो एक्चुअली शमैन है, यू नो. एंड आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आई कैन एक्सप्लेन हाउ, बट हो सकता है. एंड वो जो फिगर है, दैट सीटेड फिगर, इज इन अ लॉट ऑफ फिगरिंग्स, लॉट ऑफ सीलिंग्स, लॉट ऑफ सील्स, बहुत अलग अलग तरीके से, यू नो, कहीं दो लोग लड़ रहे हैं और वहां पर भी ये फिगर बैठी उनको देख रही है, यू नो. सो क्लियरली देर इज अ शमैनिक कल्ट. शमैन क्या होता है, मे बी आई कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वंस यू आस्क, बट दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन विच इज वेरी फैसिनेटिंग.
मैं पशुपति सील के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो रिलीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हम लोग कई बार किसी नई सभ्यता को पाते हैं और हम लोग कहते हैं कि उनके रिलीजियस व्यूज क्या थे। क्या यह हमेशा एक अच्छा अजम्पशन होता है कि एक रिलीजन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से एक हिंड्रेंस बन जाता है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि रिलीजन कहाँ है उनका, तो आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जो आप पहचान नहीं पाते, जैसे वो शिवलिंग वाली चीज है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ शिवलिंग मिले हैं, और चूंकि आप पहले से रिलीजन ढूंढने वाले माइंडसेट में होते हैं, आप ये उसको अपने धर्म का कोई सिंबल मान लेते हैं। तो पशुपति के साथ मुझे लगता है, मैंने आपका जो वीडियो देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, आपने कहा था कि हो सकता है इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं हो। आई होप यू विल क्लैरिफाई मोर ऑन दैट कि वो शमैनिक ट्रेडिशन से आपका मतलब क्या था। पर ये किस हद तक मानना सही है कि रिलीजन होगा ही होगा, शायद नहीं था, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि वहां पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं बिल्कुल।
करेक्ट. तो दो चीजें, यू नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये बहुत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ बायस कि अगर हम किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं किसी सिविलाइजेशन में, वी आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू पुट इट इन टू द रेलम ऑफ सुपरनेचुरल और रिलीजन, यू नो, जस्ट बिकॉज हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये रिलीजन है. और दूसरा एक प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज हमारे पास इसके लिए एक रिलीजियस पैरेलल अब है तो हम इसको भी रिलीजियस मान, यू नो, समथिंग विच इज सिमिलर. सो जैसे कि, यू नो, शिव इज अ योगी, तो ये भी एक योगिक फिगर मिल गई तो बोल दिया जी शिव हैं ये, मिले हुए, यू नो, नो फर्दर क्वेश्चनिंग. और मे बी दिस कुड बी समथिंग एल्स, यू नो, जस्ट बिकॉज देर आर दीज टू योगीज डज नॉट मीन ऑल योगीज आर द सेम, राइट? देर कुड बी समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस. वो थिंकिंग नहीं है. एंड वो आई थिंक कहीं ना कहीं ASI की भी प्रॉब्लम है, जस्ट विद द शिवलिंग, लाइक यू सेड, यू नो. सो शिवलिंग का एक ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन दैट पीपल हैव गिवन इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मे बी वी हैव फाउंड समथिंग लाइक दिस. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दीज आर चेस पीसेस, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ अ, यू नो, इनिशियल काइंड ऑफ गेम दैट दे मेड विद चेस. एंड उसके बाद भी, यू नो, महाभारत एटसेट्रा में यू फाइंड चौपड़ एटसेट्रा, विच इज वेरी सिमिलर to the kind of, you know, game that people play. So maybe this could be some proto chopper thing, you know, game that these people are playing. But and what is fascinating is ये जो शिवलिंग है हमें कहाँ मिले हैं is even more important. We have found them in drains. HD Sankalia, जिन्होंने archaeological excavation की थी, उन्होंने बोला था that we have found these, you know, particular chess pieces or whatever pieces in drains. So if they were religious, drains में तो certainly नहीं मिलेंगे ना. They will be found in a much more सेक्रेड प्लेस, या तो घर में मिलेंगे या किसी फायर ऑल्टर में मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फायर ऑल्टर एक अनदर चीज है, लोगों को
फायर
लगता है वो
ऑल्टर
हवन कुंड मिले, हवन कुंड मिले, विच मेक्स नो सेंस. यू नो, यू फाउंड देम इन होम्स, घर में कौन हवन कुंड रखता है? फॉर ऑल दे आर, यू नो, यूज फॉर
कुकिंग
कुकिंग
प्लेसेस,
एक्सेट्रा, राइट? सो कुकिंग प्लेसेस, सो दैट्स वन थिंग. एंड द अदर, ऑफकोर्स, द शमैन. So, you know, the shaman could be a religious entity. It could be not so much a religious entity. Possibly the shaman was a political entity as well, you know, just because of his power that he could wield on others. So, what a shaman basically is, shaman kya hote hain? Wo animal ki power ko appropriate kar lenge through some sort of a magic or a ritual or whatever they do. And they will heal others, you know, and through that acquire a sort of a power that could be either religious, political, or both. So there could be a religio-political power ruling over Indus Valley civilization as well. We don't know. You know, we don't have a clarity on that. That particular entity could also be a woman. There is a paper written on that as well, saying that, you know, we are presuming that this is a man. There is actually no sexual marker in this. John Marshall ki sabse badi problem thi, he thought that the belt around, you know, that particular person who's sitting is possibly an erect phallus when it's actually just a belt, you know, so which is why he thought because it's an erect phallus and Shiv has, you know, that Shivling connection. So maybe this person also is the same. But it's actually just a belt on a belt ka buckle, hai, which, you know, he thought. And so, again, there is no sexual marker. So for all we know, this could be a completely different entity. This could be a woman. Then there is a bull man, you know, again, a possibly completely mythical thing, you know, where the face is possibly resembling that of a bull because it has horns. And, you know, it has this gaunt face, because usually bull ka hota hai. So Doris Srinivasan has written a paper on it. इनफैक्ट हरप्पा की एक पॉटरी सील पे भी हमें ऐसा एक बुल मैन करके मिला है जिसका फेस थोड़ा ऐसे गॉन्ट है ऊपर में ऐसे हॉर्न्स है सो यू कुड इट कुड बी अ बुल मैन एज वेल तो द आइडिया विद हरप्पन सिविलाइजेशन एंड आई कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू कॉशन पीपल इज देर आर मोर क्वेश्चन लेस आंसर्स बिकॉज हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है तो द मोर यू लीव दीज थिंग्स ओपन एंडेड the more fascinating and the more closer to knowing the Indus Valley civilization you will be. Agar aap maan ke baith jayenge ki ye ek hi interpretation hai, aap nahi jaan payenge how fascinating the Indus Valley civilization is. So don't stop yourself from, you know, knowing more about the civilization, but just presuming ki bhai aaj ye parallel mil gaya, to hum usko us pe thop dein.
Mujhe to hamesha ye notice hota hai ki fundamentalist thought, jo ki matlab, haan nahi, mujhe pakka pata hai, ye sach hai, ye unhi jagahon pe zyada panapta hai, jahan pe zyada doubt hota hai. मतलब क्लैरिटी नहीं है इसीलिए कोई एक घुस जाएगा बोलेगा मेरे पास क्लैरिटी है बाकी सब तुम लोग मेरी बात मानो नहीं मानोगे तो आई हैव पॉलिटिकल पावर एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट विद यू ये रिलीजन के केस में भी मिलता है हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता बट पीपल आर 100% सर्टेन कि गॉड ही था वहां पे आई एम अज्यूमिंग यू आर एन एथिस्ट
यस एब्सोल्युटली आई एम एन एथिस्ट
ओके यू आर एन एथिस्ट सो
बिफोर आई गो टू द I would like to add something over here. I think that comes from this human need of having closure. You know, I don't want to sort of keep my mind thinking or keep it, you know, open-ended. Ki ho sakta ye ho, my possibilities, because possibilities are complex, right? And possibilities are many. So I think a lot of people are scared of that. And agar ek closure mil jaye, to it's easier to, you know, say ki haan, theek hai, ye answer hai, baat khatam. So I'm going to not stop thinking about it. I will sort of concentrate on other things. So I think it also, and I'm not making a value judgment, but I'm just generally saying, I think it sort of shows a sort of a less, you know, in level of intelligence, the fact that you cannot comprehend various possibilities.
Do you find this affects people in academia also? Like, koi academia mein ghusta hai, keh rahe, ek aise discipline mein jahan pe doubt hi doubt hai, kuch saal mehnat karne ke baad wo paata hai ki main kisi sahi, matlab actual natije par nahi pahuncha. एंड देन जो बैकअप सिस्टम होता है मतलब उनका रिलीजियस व्यू वो फॉरवर्ड आ जाता है और वो अपने आप को असर्ट करने लगता है ये होता है
Absolutely. I think sub academia mein hoga, not just history academia. I think all academia will have this. Kyunki human bias to khair hai hi har academia mein, but ye aur bhi zyada hai, this religious bias especially, or you know, things that you believe in today, you know, you're always trying to find ki uska kya origin hoga. Aur agar aapko kuch similarity mil jati hai, to you think ki haan, ye isi cheez ka origin hai. And you shut yourself to other, you know, possibilities completely. And I think that's anathema to the very idea of academia, because the whole idea of academia is to ask more and more questions. You know, ye ek research mein bhi hume sikhaya jata hai. Thankfully, I have studied from the best in JNU. Mujhe ye bahut awareness hai is bare mein. What we were, you know, taught before everything else that we learned about research is that research is less about finding answers and more about formulating research questions. एंड हो सकता है आपकी रिसर्च के दौरान आपके सारे क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे यू विल नॉट फाइंड आंसर्स बट दैट्स गुड यू शुड कीप दोज आंसर्स यू शुड राइट अबाउट दोज क्वेश्चंस बिकॉज कल को हो सकता है हमें कुछ मिल जाए एंड देन दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड लेटर सो इट कुड यू नो प्रोपगेट फर्दर रिसर्च बट लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक अबाउट एकेडेमिया लाइक दिस. दे थिंक कि हम यू नो वील बी द फर्स्ट टू फाइंड आंसर्स एंड वील पेटेंट इट एंड वील से दिस इज आवर्स एंड वील फिनिश दैट. वील राइट फोर पेपर्स अबाउट इट, वील राइट अ बुक अबाउट इट. सब बोलेंगे हाँ इसने ये आंसर प्रोवाइड कर दिया. नहीं, स्पेशली इन हिस्ट्री तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा हुआ है एक चीज के बारे में, लाइक पशुपति सील के बारे में. देर आर एटलीस्ट 10, यू नो, 10 to 12 डिफरेंट academic papers on it with very different interpretations, you know. So again, you will have to leave that question open-ended, and thankfully, yes, you know, we have that, you know, some scholars do think like that. But you're right, most people in academia are just so closed off to other possibilities. Or history mein to ye karna aur bhi bahut kharab.
I see. Before I go to the next question, one small question about John Marshall. Was he an archaeologist or a historian?
Neither. क्योंकि इस समय में कुछ उनके पास किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं है ना. ही इज जस्ट अ कॉलोनियल ऑफिसर. तो आर्कियोलॉजी तो इस समय में जॉन मार्शल, यू नो, इज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एक चीज जॉन मार्शल ने अच्छी की, उसको समझ आ गया कि जो हमें मटेरियल मिल रहा था हड़प्पा मोहनजोदारो से वो किसी और पीरियड से मिल नहीं खाता था. तो ही अनाउंस्ड अ न्यू सिविलाइजेशन. वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट. क्योंकि उससे पहले जो दो डायरेक्टर जनरल थे, स्पेशली अलेक्जेंडर कनिंघम, वेरी महान शख्सियत, उन्होंने तो फेंक ही दिए आर्टिफैक्ट्स. उनको मिले, उन्होंने बुद्धिस्ट पीरियड में इसको फिट करने की कोशिश की और उनको नहीं फिट हुआ. तो उन्होंने कहा भैया जस्ट आई हैव नथिंग टू डू विद दिस. अगेन एन एग्जांपल ऑफ यू नो बीइंग क्लोज माइंडेड इन
एकेडमी.
नहीं फिट हुआ तो उन्होंने फेंक दिया. बट जॉन मार्शल थैंकफुली वॉज ओपन माइंडेड एंड ही सेड, यू नो, व्हाट वी आर फाइंडिंग इज हो सकता है नई सिविलाइजेशन हो, तो हम इसको नई सिविलाइजेशन मानेंगे. एंड देन थैंक्स टू राखल दास बैनर्जी एंड यू नो ऑल ऑफ दीस पीपल, वी नाउ हैव अ न्यू सिविलाइजेशन. बट जॉन मार्शल इज वाज नाइदर अ ट्रेन्ड आर्कियोलॉजिस्ट, बिकॉज़ उस समय आर्कियोलॉजी हैडन्ट इवन डेवलप्ड एज अ डिसिप्लिन. हिस्ट्री हैडन्ट इवन डेवलप्ड एज अ डिसिप्लिन. ये जो सारे कॉलोनियल ऑफिसर्स जो हमारे बारे में लिख के गए हैं, इनके पास रत्ती भर भी हिस्टोरिकल ट्रेनिंग नहीं है. आई वुड कॉन्स्टेंटली आस्क पीपल टू नॉट बिलीव और टू नॉट जस्ट क्लोज योर आईज टू व्हाट दे हैव रिटन. हर चीज को एनालाइज करें. हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल सोर्सेस को बहुत एनालाइज किया है. आप भी हिस्टोरियंस को पढ़ें जिन्होंने उसको एनालाइज किया है. ऐसे ही पढ़ लेंगे और उसको मान लेंगे तो नहीं. सो नाइदर इज ही एन आर्कियोलॉजिस्ट नॉर इज ही अ हिस्टोरियन. वो इज अ कॉलोनियल बाबू हु इज जस्ट, यू नो, ट्राइंग टू, लाइक दे डिड विद इजिप्शियन टूम्स एटसेट्रा, जाकर वहां ट्रेजर हंटिंग कर रहे हैं और अगर कुछ अच्छा मिल गया है तो उसको बाहर ला रहे हैं. अपनी ही इंटरप्रिटेशन लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ऐसा मिल गया या अभी हमें ऐसा लग रहा है तो वैसे भी हुआ होगा. So, you know, this is massive hit and trial is going on and it's kind of sad, but, you know, I think ye thoda benefit of doubt bhi hai ki har discipline jab shuru hota hai, uske baare mein research shuru, to aise hi hota hai. There is a lot of hit and trial, there are a lot of hits and misses, and then accordingly people learn and, you know, we then lay down ground rules ki kya methodology hai, so on and so forth. So, I think wo dono hi nahi hai. John Marshall neither is an archaeologist nor is he a historian.
I was only asking because I heard from some other people. बिकॉज वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, बाई डेफिनेशन वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, और फिर मैंने दूसरी जगह पे सुना कि वो नहीं थे, तो मेरे माइंड में थोड़ा डाउट था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्क्रिप्ट, द इंडस वैली स्क्रिप्ट. इट्स अबाउट इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में हमें क्लियरली क्या क्या पता है. इट्स ओके, हैव योर वाटर. हमें क्या क्या पता है और इंडस वैली स्क्रिप्ट की आज एग्जिस्टिंग भारत में जितनी स्क्रिप्ट्स हैं या भारत के बाहर भी जो स्क्रिप्ट्स हैं, किसी के साथ कोई सिमिलैरिटी है क्या?
तो इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में हमें बहुत कम पता है. व्हाट वी नो इज कि इट इज नॉट अ, यू नो, जैसे जो लेटर सिस्टम होता है ना, वो नहीं है उसमें. इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट, व्हिच मींस कि जो भी वहां सिंबल है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग या तो एक पूरा वर्ड होगा, जैसे चाइनीज जब आप लिखते हैं तो उसमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल का हो सकता पूरा वर्ड हो. तो मान लो रुचिका, अगर मुझे इंडस्क्रिप्ट में लिखना है तो मैं हो सकता है सिर्फ एक ही सिंबल लिखूं जिसका पूरा मीनिंग ही रुचिका, यू नो, दैट सिंबल इटसेल्फ वुड मीन रुचिका. और आई विल राइट जस्ट थ्री लेटर्स, रू, ची एंड का. So it's basically, you know, not really corresponding to an alphabet. It corresponds to what is called as a syllable, you know, which is a combination of sounds. So इट्स लोगो सिलेबिक, इट्स नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग
ओके
टू अल्फाबेट. अल्फाबेट सिस्टम वहां नहीं है. वी सर्टनली आर वेरी श्योर ऑफ दिस. दूसरा वॉट वी नो इज देर इज क्लियरली नॉट अ लॉट ऑफ राइटिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस, इवन इफ इट्स अ स्क्रिप्ट. इसमें ज्यादा राइटिंग है नहीं. बहुत द लॉन्गेस्ट वे फाउंड इज जस्ट अ 17 सिंबल इंस्क्रिप्शन, विच इज नॉट अ लॉट. You know, compare this with the same contemporary civilization, Mesopotamia, जहाँ उन्होंने cuneiform गाड़ गाड़ कर पूरा एक epic लिख दिया. You know, epic of Gilgamesh.
Gilgamesh.
That is called prolific writing. वो proper writing है, उसमें किताबें लिखी जा रही. यहाँ ऐसा कुछ नहीं. At least we have not found so far. आगे जो मिलता है.
Okay. So मेरा एक question है. Sorry to interrupt. कि
No, please go ahead.
आपका आपका point है कि इस script में लिखा नहीं जा सकता या अभी तक कुछ लिखा गया मिला नहीं है.
लिखा गया मिला है.
ओके.
बट वो क्या लिखा गया है इज वेरी व्हाट वी हैव फाउंड सो फार इज स्क्रिप्ट ऑन द सील्स. तो सील्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंसान का नाम जो ट्रेड कर रहा है, क्या ट्रेड कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट है उसका, कितना यू नो 50 किलोग्राम है, जितना भी जो भी उनका सिस्टम ऑफ नोटेशन है वो है. हो भी सकता है लाइक मैथ्स इज दिस इज अ सिस्टम ऑफ नोटेशन. सो अगेन इस पे देन फिर यू नो पोएट्री नहीं लिखी जाएगी, इसमें लिटरेचर नहीं लिखी जाएगी, राइट. तो हो सकता है इट कुड जस्ट बी अ सिस्टम ऑफ नोटेशन. तो लिखा तो है, इट्स सर्टनली अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. बट वॉट काइंड इज द बिग क्वेश्चन. इज इट लाइक यू नो जैसे हम आज इंग्लिश लिखते हैं तो मैं उसमें लिटरेचर भी लिख सकती हूँ हिंदी, और इट्स लाइक मैथ्स वेयर 2 + 2 = 4.
दैट इज माय मेन क्वेश्चन. हां, व्हिच इज आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि हैव वी डिस्कवर्ड एनी मैथमेटिक्स देयर.
वी हैवंट, यू नो, सो वी हैवंट फाउंड एनीथिंग. जैसे इनका सिविलाइजेशन में एबेकस टाइप्स था, ऐसा कुछ तो हमें नहीं मिला है. बट वॉट वी हैव सर्टनली फाउंड इज this, and this could be some form of you know mathematics, because it's related to something that would involve mathematics like accounting etc, which is important in trade, right. To ho sakta hai this is a system of notation like mathematics, but ho bhi sakta hai this is a script which was not used that frequently. You know, zyada tar log bol rahe hain, so all the knowledge is being passed orally and not really written much. You are writing only when absolutely necessary, like for example, you know, when you're using trade or when you're accounting, etc. Or on weights, ki ye, you know, 5 kilo ka hai, ya jo bhi unka, whatever system of weightage that they have. So that, right? So that is one thing that we know about the Indus script, and one question that we have about the Indus script. The other important thing about the Indus script, you know, what scripts that it corresponds to, like you were saying. So a lot of people think, ki, you know, Brahmi is similar. Hai. But Iravatham Mahadevan, who has worked a lot on the script, has made this very important assertion ki ye jo script hai, this stops, you know, being in circulation or coming upon, you know, as inscription from 1700 BCE onwards. Uske baad se humko nahi milta hai. And Brahmi then surfaces 3rd century BCE. तो ये इतना बड़ा डिसकंटिन्यूटी होने के बाद कैसे सडनली यू नो इट कैन जस्ट रैंडमली पॉप अप.
डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के गायब होने के कुछ 100 साल बाद, कई 100 साल बाद हम लोग को वैदिक सिविलाइजेशन, ब्राह्मी, सॉरी संस्कृत वगैरह ये मिलती है, तो इज इट पॉसिबल कि एक कंटिन्यूस लाइन है जो कि लॉस्ट है, या जो वैदिक सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इतनी ज्यादा अलग है कि कॉमनैलिटी होना आश्चर्यजनक होगा.
आई वुड से लैटर. यू आर राइट. कॉमनैलिटी होना आश्चर्यजनक होगा. बहुत डिफरेंट है ये दोनों. यू नो द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर एग्जांपल व्हिच इज द मेजर यू नो एविडेंस आल्सो अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक एविडेंस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. द मेजर एविडेंस इज देयर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. इंडस वैली सिविलाइजेशन is an agricultural economy. They practice agriculture a lot. We found proper fields, you know, furrows vagera mile hame Kali Bangan mein. That is proper evidence. When these people come in, what is called as the Aryans, they take to pastoralism, because jahan se aa rahe hain wahan pastoralism hai. They are steppe pastoralists. And they practice pastoralism for 500 years. So agriculture stops in India, in the known parts of India, Indus Valley civilization parts, it just stops happening around 1700 BCE. And then these people come in, there is complete change, overhaul of the economic system, pastoralism, and then they start taking to agriculture around 1900 BCE. And then urbanization happens, so on and so forth. तो आई थिंक इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. तो ये मानना ही गलत होगा कि देर इज सम कंटिन्यूएशन. देर इज वेरी लिटिल कंटिन्यूएशन, एंड द कंटिन्यूएशन इज मोर ऑफ एन आफ्टर थॉट. तो जब ये लोग वेदा वगैरह लिख रहे हैं, सो लास्ट वेदा में, अथर्व वेद में, यू विल सी अ लॉट ऑफ द लोकल प्रैक्टिसेस विच आर हैपनिंग, स्पेशली लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर बींग रिटन अबाउट इन द अथर्व, राइट, विच इज ऑल्सो वेर योगा इज मेंशन्ड. सो पॉसिबली योगा इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन थिंग, which then these people found here and put it in their own religious books, especially Atharva, right? Veda, Tantra, or sorry, Yoga, Tantra, these are all in Atharva. So these are all clearly local practices that they find over here. So you are right. I think it is because of the discontinuity that it's ridiculous to think ki Brahmi or Indus script mein koi parallel ho sakta hai. Another thing, it's written from left to sorry, it's written from right
Right
to
to
left.
left, yeah.
It's not written from left to right, which is how we write English and Hindi and Sanskrit. In that respect, just in that respect, it sort of matches with the Arabic script. It is also written in a similar manner, right? But so that's the only similarity. There's no other similarity between Arabic script and the English script. But that
Okay.
is one, the direction of the script.
Okay. सो मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, पर द कंक्लूजन आई थिंक वुड बी कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको समझने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि हम किसी क्लियर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि उसका भारत की किसी एग्जिस्टिंग भाषा के साथ कोई लिंक है या नहीं. राइट?
एब्सोल्युटली.
ओके
वो एक
ओके
भाषा को कॉरेस्पॉन्ड करती है अपने आप में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है.
हाँ, मतलब ये
दैट
खाली
इज
स्क्रिप्ट हो
कॉरेस्पॉन्ड्स
सकती
टू अ
है.
लैंग्वेज. हाँ, करेक्ट.
ओके. You know, the question that blows my mind is that we have a script and it is obvious that they must have had a language. Obviously, because they built a city, they can't do it without planning, writing, and talking to each other, right?
Yeah,
So,
they're certainly communicating.
yeah, so हमें इस भाषा के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर हो सकता है हमें इस भाषा के बारे में ज्यादा पता चले तो पता चलेगा कि Again, I don't know how to guess work. That's someone else's job. But it's just something fascinating. That's what I was saying.
या सो जस्ट टू ऐड, हमें शायद नहीं पता चलेगा कि वो क्या भाषा बोलते थे, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है इस भाषा.
Yeah, that's the sad
वी
part.
डोंट हैव एनी एविडेंस. या दैट्स अ सैड पार्ट. वी वुड नॉट नो व्हाट दे स्पोक. वी कैन ओनली, अगेन दिस इज एनीबडीज गेस. इसका क्या एविडेंस मिलेगा? द ओनली एविडेंस इज रिटन, बट रिटन एविडेंस हमारे पास है नहीं, तो हमें नहीं पता वो कौन सी व्हाट लैंग्वेज वर दे कम्युनिकेटिंग इन. बट दे वर सर्टनली कम्युनिकेटिंग इन अ लैंग्वेज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट.
या दे मस्ट हैव बीन, क्योंकि लाइक हिस्ट्री के कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हमारे पास उम्मीद नहीं होती है कि हमें पता चल सकता है, बट देन सडनली समथिंग लाइक जेनेटिक एविडेंस प्रेजेंट्स इटसेल्फ, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, और अब उसके बेसिस पे हम कई चीजों के बारे में रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी के साथ कंक्लूजन रीच कर सकते हैं. तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ क्या कोई ऐसा तरीका, कोई कटिंग एज तरीका निकलेगा जिसकी वजह से पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता है. आई डोंट नो.
We never
मेरा
know, yeah.
या मेरा अगला सवाल था आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन और द्रविडियंस के इक्वेशन के बारे में. आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इंडस वैली के पहले आए थे, इंडस वैली के दौरान आए थे या उसके बाद में आए थे, और द्रविडियंस क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं?
सबसे पहले तो क्या आर्यन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारे पास दो स्टडीज है इसको बहुत पुख्ता करने के लिए, जेनेटिक स्टडीज. एक हुई है सेल नाम के जर्नल में, ओपन एक्सेस है, वो सब जाके पढ़ सकते हैं. वो सिर्फ एक इंडस वैली साइट पे हुई है जहां पर हमें 100% इंडस वैली डीएनए मिला है. दैट मींस कि जो स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए है जो बाहर का, उससे कोई मिंगलिंग नहीं. सो इट रिमूव्स दैट डाउट कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आए. आए होते तो हमें उसमें ट्रेस मिलता इनके डीएनए का. द अदर वन व्हिच इज इन साइंस जर्नल, अगेन ओपन एक्सेस, पीपल कैन गो रीड, is on the BMAC, which is the Bactria Margiana Archaeological Complex, जो कि यूजुअली इंडस वैली के आगे जाके अफगानिस्तान वगैरह के साइट्स पे है. उसका जब डीएनए टेस्ट हुआ, उसका जब जेनेटिक टेस्ट हुआ, तो वहां पर वी फाउंड स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए, एंड दिस वी नो स्टार्ट्स एंटरिंग फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड्स. दैट पेपर वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट. एंड इससे हमें पता लगता है कि दीज पीपल क्लियरली केम व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड प्रॉपरली डिक्लाइंड. So there is no massive, clash of civilizations, so to speak, कि यहाँ से ये लोग आ रहे हैं और ये लोग ऑलरेडी ग्रेट बात वगैरह बना रहे हैं, एंड देन दे मीट, आइदर दे हैव अ हैप्पी एनकाउंटर और नॉट सो हैप्पी एनकाउंटर. नो, दे डिंट मीट लाइक दिस एट ऑल. सो देर इज अ क्लियर, इनफैक्ट देर इज अ क्लियर 200-300 year गैप बिफोर द इंडस वैली डिक्लाइनिंग एंड द आर्यंस कमिंग इन. And they are so, disconnected from each other that they start taking to agriculture 500 years later. It's not like they take to agriculture immediately, which is what would happen if they would have connected with these people, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल थे, बट क्योंकि ये लोग दे हैव डिक्लाइंड, तो एग्रीकल्चर वुड हैव प्रोबेबली नॉट बीन वेरी अलॉट देयर एट दैट पॉइंट टाइम. हो भी सकता है व्हेन दीज पीपल आर कमिंग इन दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज द वेदास टॉक अबाउट दिस. दे टॉक अबाउट दासास एंड दस्यूज, व्हिच इज बेसिकली एनस्लेविंग द लोकल पॉपुलेशन ओवर हियर. सो देर इज सर्टनली नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट दे हैड दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं. दे कॉल दीज पीपल मिलेच एटसेट्रा, व्हिच अगेन इज अ डेरोगेटरी टर्म. सो दे आर क्लियरली लुकिंग डाउन अपॉन द पॉपुलेशन जिससे वो मिल रहे हैं यहाँ पर. तो देर इज नो डाउट जेनेटिकली दैट दे कम आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज डिक्लाइन एंड दैट दे कम फ्रॉम स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए. किसी को अगर डाउट है, बाय द वे, आप जाके अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं, आज ही कराएं, और उसका रिजल्ट देखिए. उसमें आएगा स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए. भाई परसेंटेज डिफर कर सकती है, हो सकता 10% हो सकता 12% हो, पर पक्का आएगा. वो आपका इन अनमिस्टेकेबल प्रूफ है कि ये लोग बाहर से आए थे. फॉरगेट अबाउट द जेनेटिक स्टडीज, मत पढ़ो उसको.
साधारण भाषा में स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए क्या है?
तो स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए बेसिकली उन लोगों का डीएनए है जो लोग, जिनको हम आर्यंस बोलते हैं, जो लोग स्टेप पास्टोरलिस्ट, जो लोग स्टेप एरिया से आए. सो स्टेप इज बेसिकली सेंट्रल एशिया में एक ग्रासलैंड्स है,
सेंट्रल एशिया.
और बड़ी ग्रासलैंड्स है. हाँ, और वहां पर दैट इज ऑल्सो द नेचुरल होम ऑफ द हॉर्सेस. तो ये हॉर्स लेके वहीं से आए, बिकॉज ग्रासलैंड्स आर, दीज ह्यूज ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉर्सेस टू सॉर्ट ऑफ ग्रेज ऑन, रन एंड सॉर्ट ऑफ लिव फ्रीली और व्हाटएवर. एंड वो वेदर भी उनके लिए बहुत होता है अच्छा. तो ये लोग घोड़ों पे यहाँ आए. इनका डीएनए इज स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए, राइट? सो वी कॉल देम स्टेप पास्टोरलिस्ट बिकॉज दे वर डूइंग पास्टोरलिज्म एंड दे कम फ्रॉम द स्टेप, राइट? सो स्टेप पास्टोरलिस्ट डीएनए इज द डीएनए ऑफ दीज पीपल. एंड एवरीबडी इन इंडिया टूडे हैज सम, अप टू 30% है अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक स्टडी इन साइंस. बट 30% से हो सकता है कई पॉकेट्स में 35-40 भी हो हरियाणा एक्सेट्रा एरिया में, बट जरूर है, एवरीबडी हैज दैट.
ओके
Oh, and your second question about the Dravidians, right? Were the Dravidians? So there is, a culture that we have found in the south called the Gyaneshwar Jodhpura culture. Everybody should read about this, which is very similar to the Indus Valley civilization, which has led to this assertion ki Indus Valley civilization or jo Dravidians hain, unka koi ek connect ho sakta hai. So the Gyaneshwar Jodhpura culture, for example, has the same, brick proportion ratio. They are building great drains, etc. So it's a fascinating culture. The pottery is very similar. That we were finding in mature Harappan time, which is the best of Harappan times. So possibly there could be a connect. They could have migrated. This is the burgeoning theory about this, that Indus Valley के जो लोग हैं वो हो सकता है यहाँ पर आए हों, जहाँ ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर है साउथ में, as a trading party, and they stayed over here, right? Bringing that culture to this particular part, and never left. So they continued this culture in this particular area. And then of course the Aryans came in later, so on and so forth, right? So possibly there is a connect, and the Gyaneshwar Jodhpura culture is the evidence of that connect.
So if I'm getting the overall picture clearly, इंडस वैली की अर्बन सिविलाइजेशन थी स्प्रेड आउट ओवर एन एरिया, वो डिक्लाइन हुई, लोग साउथ की ओर आए और उनकी सिविलाइजेशन अर्बन नहीं रही, शायद रूरल बन गई, और इस दौरान आर्यंस आए.
सो आर्यंस बेसिकली तब आए जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन, राइट,
डिक्लाइन हो रही थी. ओके,
हाँ, डिक्लाइन हो गई थी, इनफैक्ट
हो चुकी थी. ओके,
हरप्पन सिविलाइजेशन को हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं आर्कियोलॉजिकली. एक होता है अर्ली हरप्पन, जबकि ये शुरू हो रहा था तो अराउंड, यू नो, टाइम पीरियड 2300 बीसी से लेके 2100 बीसी के बीच में या 2200 बीसी के बीच में अर्ली हरप्पन फेज है. देन फ्रॉम 2200 बीसीई ऑल द वे अप टिल, यू नो, 2000 बीसीई इज द बेस्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, द मेच्योर हरप्पन कल्चर. उस समय में हमको ये ड्रेनेज सिस्टम अमेजिंग मिलता है, ब्रिक्स मिलती हैं, ग्रेट बाथ वगैरह सब उस समय बने, द ग्रैनरी, यू नो, सो ऑल ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी नो अबाउट इंडस वैली इज द मेच्योर हरप्पन फेज. देन व्हाट वी फाइंड इज द लेट हरप्पन फेज. नाउ द लेट हरप्पन फेज इज बेसिकली द मोस्ट इंटरेस्टिंग. सो मेच्योर हरप्पन फेज का जो लीट मोटिव था, जिससे हम उसको जानते हैं, जो सिंबॉलिक है, लाइक दीज ड्रेनेज सिस्टम्स एटसेट्रा, वो लेट हरप्पन में नहीं. सो व्हेन पीपल से कि इंडस वैली में क्या डिक्लाइन हुआ, ये नहीं कि सारे लोग मर गए, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इट मींस. व्हाट इट बेसिकली मींस इज जो मेच्योर हरप्पन की, यू नो, इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वो खत्म हो गए. विच लीड्स मेनी स्कॉलर्स टू मेक दिस असर्शन कि हुआ क्या होगा इज अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइजेशन. क्योंकि पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही ये स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट कर सकती है कि वेट्स इतने होंगे, इतने से इतने होंगे, ब्रिक्स ऐसे बनेंगी, प्लानिंग ऐसे होगी, सिटाडल यहाँ बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो जो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्शल कर सकती है रिसोर्सेज, लोगों को साथ ला सकती है ग्रेट बात बनाने के लिए एंड सो फॉर्थ, टैक्सेस ले सकती है, दैट डिक्लाइंड और दैट एंडेड. सो व्हेन दैट एंडेड, एवरीथिंग दैट इट वाज डूइंग एंडेड, व्हिच इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, कमर्शियल प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, वो सब खत्म हो गया, राइट. तो लेट हरप्पन देयरफॉर डज नॉट शो एनी ऑफ दीज साइंस ऑफ द मैच्योर हरप्पन. उनकी पॉटरी भी बहुत डिफरेंट है. सो मैच्योर हरप्पन पॉटरी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फायर्ड पॉटरी और बेक्ड पॉटरी, बट लेट हरप्पन में वी हैव अ लॉट ऑफ पॉटरी व्हिच इज नॉट बेक्ड, व्हिच इज नॉट फायर्ड एट ऑल, राइट. तो व्हाट बेसिकली एंडेड इज द मैच्योर हरप्पन फेज एंड द लेट हरप्पन फेज स्टार्ट्स, व्हिच आल्सो, यू नो, मोर और लेस एंड्स इन 1700 BCE. These people come even 200 years later than that. Aryans are coming in 1500 BC, जब late Harappan phase भी खत्म हो गया, right? And they come, they do pastoralism, and then they start with their urbanization in 900 BCE, right? Which is when in the Rigveda, possibly the battle of the 10 kings happened, so on and so forth.
So, Aryan invasion theory क्या है? किसने propose की थी और क्या वो valid आज है और उसको माना जाता है?
तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आर्यन व्हीलर ने प्रपोज की थी सबसे पहले. वो एक कॉलोनियल बाबू थे, अगेन, यू नो, आई विल नॉट कॉल हिम एन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरिकल बिकॉज़ ही वाज नाइदर. उन्होंने एक एली उनको मिली थी हरप्पन, जब यू नो खुदाई हो रही थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो रही थी. सो ही फाउंड बेसिकली दिस सर्टन एली वेयर ही फाउंड एटलीस्ट 6 to 7 desecrated skulls, in the sense that, you know, they were sort of very badly kept. Kisi ka baah kata hua tha, kisi ka sar kata hua tha, somebody had a leg missing, and they were all sort of piled in a pit and, you know, buried. And just on that evidence, you know, just the ridiculousness, just on that evidence, this person concluded that this is the doing of the Aryans. They came, and they came as a violent entity, and they ended up killing these people. And this is the unmistakable, you know, evidence of Aryan invasion. And, you know, the problem with the word invasion, it is sudden and it is all at once. But migration is gradual and is in waves. So Aryan migration here, that is what is, you know, makes sense, because this happened in, you know, waves. So first wave happened in 1500 BC, second in 1300 BC, so on and so forth, right? So ye log dheere dheere karke aa rahe hain, waves mein aa rahe hain, ekdam se nahi aa rahe hain. But, you know, just because Aryan invasion has no other evidence except for this alley evidence, which is like very slim evidence for an entire theory, to wo hum khatam kar chuke hain. But that also does not mean that the encounter that the Aryans had with whoever was here at this point of time was peaceful. They were clearly not peaceful encounters. Because again, uska evidence tumhe Veda mein hi mil jata hai. When you're enslaving a particular population, then there is, in fact, ye genetic studies se bhi prove hota hai. David Reich, you know, has said this, and you should, because David Reich ke institute mein hi ye dono genetic studies hui hain. Unka jo genetic lab hai, usme ye dono studies. So David Reich was of the opinion that ye jab Aryan log yahan aaye, they actually ended up replacing, which means, you know, killing off the entire population, male population that exists over here. Which is a very interesting, you know, idea to have. This is how violent, you know, the encounter was, you know, amongst these two people, because the genetic evidence shows that initially, you know, we find a huge amount of Aryan evidence, and then, you know, slowly the Indus Valley, even, you know, genetic makeup starts to sort of catch up, right? Because of the intermingling of these two populations. And also another thing, these people that come over here are largely a male population, Aryans, right? They were largely male population, very few, maybe no females at all, right? Because the kind of DNA and the genetic evidence we find also tells us.
Okay.
So it's fascinating, the encounter between these two. It's not a peaceful one at all. But that does not mean the Aryan invasion theory holds true.
Yeah.
Obviously, it does not.
Uska so the... The point is, Aryan invasion theory का foundation है कि वो लोग सिर्फ invade करने के लिए आए थे, and that is obviously been debunked multiple times. So why do you think आज तक संघी quarters में ये फैलाया जाता है कि Aryan invasion theory बच्चों को पढ़ाई जा रही है? क्योंकि I don't think ये बच्चों को पढ़ाई जा रही है.
नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है आर्यन इन्वेजन. बच्चों को इनफैक्ट बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती है, और पढ़ाई जाती है कौन सी वैलिड है कौन सी नहीं वैलिड. तो मैंने भी स्कूल में आर्यन इन्वेजन के बारे में पढ़ा था. मैंने ये पढ़ा था कि उस पर एविडेंस नहीं है, और मुझे अभी तक ये बात याद है. कौन ये बच्चे हैं जो ये बात नहीं पढ़ रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन का एविडेंस वैलिड नहीं है, मुझे नहीं पता. दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास और व्हाटएवर, बट ऑल टेक्सटबुक्स इन एनसीईआरटी विल से दैट कि आर्यन इन्वेजन का एविडेंस बहुत कम है, एंड देयरफॉर द आर्यन इन्वेजन थ्योरी डज नॉट होल्ड ट्रू. प्रॉब्लम क्या है, मेनी पीपल टेंड टू थिंक आर्यन इन्वेजन एंड आर्यन माइग्रेशन आर द सेम, व्हिच इज नॉट द केस. That is where the biggest problem is. Aryan migration is, you know, I don't even call it theory anymore because it's a fact. Aryan migration hui hai, there's no doubt about this. Aryan invasion is a theory which has been debunked.
Cool. So we are already at the 58 minute mark. I have two or three questions left. Uske baad hum log live chat ke kuch lenge. I hope that's okay.
Yeah, that's
cool.
Fine.
So mera agla sawal, if you want to like answer this briefly, इंडस वैली के लोगों का हुआ क्या, वो कहाँ गए, और उनके उनके मार्कर्स आज हमें कहाँ मिलते हैं? इज इट स्प्रेड आउट ऑल ओवर और इज इट इन सम स्पेसिफिक स्पॉट?
सो वो लोग कहाँ गए इज बेसिकली, यू नो, अ बिग क्वेश्चन मार्क. वी डोंट नो, यू नो, वेयर एग्जैक्टली दे वेंट. गुजरात में हमें लेट हरप्पन साइट्स हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा एटसेट्रा. पॉसिबली दैट्स वन एरिया दैट दे वेंट टू फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वेंट टू गुजरात. अनदर, यू नो, सो राखीगढ़ी इज अ साइट ऑफ ऑल थ्री, अर्ली, मच्योर एज वेल एज लेट. तो पॉसिबली, यू नो, हरियाणा एरिया एटसेट्रा, बनवाली, ऑल ऑफ दीज आर लेट. बनवाली स्पेशली इज अ लेट हरप्पन साइट. So possibly they went to, you know, Haryana and all of these areas. So ho sakta hai, like Sinoli, etc. are also, you know, sort of late Harappan sites. So ye sare area mein wo gaye, clearly because these are late Harappan sites over here. They certainly had to desert a huge part of the Indus Valley site area. That also, you know, begs questions. क्यों वो वहां से चले गए? पॉसिबली बिकॉज ऑफ, यू नो, दिस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन डिक्लाइनिंग, लीडिंग टू केओस, एंड देन, यू नो, दीस पीपल थॉट दैट वी आर नाउ ऑन आवर ओन एंड वी हैव टू, यू नो, गो व्हेयरएवर वी कैन. इंडस वैली वाज आल्सो इन इटसेल्फ नॉट अ वेरी पीसफुल सोसाइटी. एक बहुत बड़ा मिथ है कि, यू नो, पीसफुल यूटोपिया था,
पीसफुल थे, युद्ध नहीं लड़ते थे क्योंकि वेपन्स नहीं मिले वगैरह वगैरह,
क्योंकि वेपन्स नहीं मिले. ये बहुत, यू नो, वी हैव एक्चुअली फाउंड, यू नो, टूल्स एटसेट्रा, एंड वेपन्स भी हैं थोड़े बहुत. We've actually found these, you know, balls in 200, 300, Surkotada karke ek site hai, uspe mile hai, 200, 300. And possibly these are, you know, sling cannon balls, which were used to bring down mud forts, etc. तो देर इज यू नो एविडेंस ऑफ वायलेंस, बट मोर देन दैट बोन टिश्यू एनालिसिस में बहुत वायलेंस का एविडेंस है, स्पेशली वायलेंस टूवर्ड्स विमेन. सो देर आर यू नो स्टडीज विच टॉक अबाउट बोन टिश्यू इंजरी. तो वो आपके यू नो बोन पे मार्क हो जाएगा इफ यू हैव अ फ्रैक्चर, इफ यू हैव ब्रोकन बोन, चिप टूथ, वो सब आपके बाद में स्केलेटन में दिखेगा. एंड वॉट इज फैसिनेटिंग इज द वे दैट दैट फ्रैक्चर इज द वे दैट बोन इज बीन ब्रोकन. वी नाउ हैव यू नो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा टू टेल अस कि एक्सीडेंटल था या इन्फ्लिक्टेड इंजरी थी. यू नो हाउ योर नोज इज ब्रोकन विल टेल यू कि आप कैसे गिरे, somebody pushed you or you know you sort of slipped or whatever. So all of this we can find out, and we know there is a lot of intentional violence which did happen, and women were very susceptible to it. So that also leads to the conclusion that there is probably some you know gender discrimination which is certainly happening in the Indus Valley civilization. Sorry, what was your main question? I tend to you know forget. I'm going to come back to that.
My main question was about where did they go, and
Where did they go?
do we find traces of them in India today somewhere or elsewhere
Any.
also?
So they clearly, you know, sort of either went south to Gujarat or both. It could be and not an either or situation. Do jagah mein gaye. And then they also migrated to, you know, Haryana, UP, all of these sides. So this was their, you know, where they went. Do we find traces of them today? Well, I would think that, you know, in terms of, for example, the idea of yoga, etc. I think that is a symbol of the Indus Valley civilization. Yoga is clearly something that the Indus Valley people were doing because, you know, even though that figure is certainly not Shiv, he's certainly a yogi because he's sitting in a yogic posture and he sits in the yogic posture in many ceilings. So it's not just Ek Bari. The yoga clearly seems to be an important thing. And that is, you know, every time I think about yoga, I think that, you know, Indus Valley were the first people to actually practice this. And then, of course, you know, incorporations, etc., happen. The idea of tantricism, tantra also, you know, different kinds of these tantric practices have also been in the Indus Valley civilization. There is another very interesting theory that the idea of the goddess was also something which possibly is Indus Valley, but maybe also not Indus Valley, but certainly was not Aryan. Because if you look at the Vedas, in the Vedas, you know, there is almost no goddess. So all the main gods are, you know, male gods. The goddess ka concept Puranic सिविलाइजेशन में आता है, पुराणिक रिलीजन में बहुत बड़ा आता है. यू नो यू हैव अ शक्त पुराण, अ शक्ति पुराण, यू नो डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर वेयर द गॉडेस इज द सुप्रीम, शी इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. एंड दे ट्रेस हर ओरिजिन्स इन ऋग्वेदा टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी कॉल्ड वाच, विच इज स्पीच, सेइंग दैट एवरीथिंग एमिनेटेड फ्रॉम स्पीच, बिफोर देयर वाज नथिंग एल्स, देयर वाज स्पीच, एंड देयरफॉर यू नो द गॉडेस हुज कम फ्रॉम स्पीच इज देयरफॉर द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. सो दैट्स हाउ दे सॉर्ट ऑफ ट्रेस द पुराणस ट्रेस देयर ओरिजिन. Too. So goddess possibly could be from the Indus Valley, you know, similar, the idea of a goddess. But not a mother goddess, you know, ye bahut bada problem hai. We don't know. She could be any kind of goddess. You know, she could be this goddess jo dono logo ko lada rahi hai. She could be a war goddess also. But ye jo
She could
idea
be
hai
a
ki she was a
goddess
mother goddess.
before whom they were fighting to please her or something. We have mummy issues. Indians have mummy issues. We project them all over the place.
All over the place, exactly. Ye bahut kharab hai.
Cool. That is kind of sort of it covers all I had. I don't want to keep you for too long because I like it's tiring. I know how tiring it can be. So let me take a few questions from the comments and then we can call it a day. So there is a question from there's a question from Democracy that says, like, since you mentioned that Rig Veda can be treated as a source of certain conclusions about historical reality. They ask, can we assume Rig Veda is a historical book? I have read it. There is hardly any detail that makes us a culture. Second, how do we assume Aryans were Brahmins? They mingled with locals. Okay, that Dr. Ruchika did not say, but they mingled with locals on a larger extent. So basically, the question is about to what extent. To whatever extent I can understand it, to what extent can we treat the Vedas or any mythological text as a source of historical reality?
The Rig Veda actually has some historical reality to it. You know, in fact, I would think all sources, no matter how mythological they are, कुछ history आप उससे सीख सकते हैं, especially social history. You know, the more mythological they are, the more यू नो द द बेटर सोर्स दे आर ऑफ सोशल हिस्ट्री. बिकॉज क्या है कि फिक्शन और ये माइथोलॉजी वगैरह में आप बहुत आसानी से जो उस समय के मोरालिटी है, उस समय का सिस्टम्स ऑफ ऑफ डिफ्रेंसिएशन है कि कास्ट कैसे प्रैक्टिस हो रहा है या क्लास डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो लिख देते हैं. तो सोशल हिस्टोरियंस वो पकड़ लेते हैं. You know, there is clearly, say, for example, Mahabharat mein ye bahut hai. You know, there is clear ideas of caste, etc. Vidu does not talk in Sanskrit because, you know, he's an illegitimate child. So there is a big question mark on his caste. And because, you know, that is the case, so you cannot talk in Sanskrit because that's the language of God. So ye sab jo cheeze hai, ye social, a keen social historian will be able to grasp from all kinds of sources, you know, no matter how fictional, how mythological, you know, they are. So, एक तो वो है, ऋग्वेदा इज क्लियरली अ ह्यूज यू नो सोर्स ऑफ सोशल हिस्ट्री. सती का मेंशन है वहां पर. यू नो देयर इज अ पर्टिकुलर हिम व्हिच सेज एंड इट्स अ फैसिनेटिंग मेंशन. देयर आर टू हिम्स. वन हिम वुड से कि यू नो द वुमन शुड सॉर्ट ऑफ सिट ऑन द पायर, शी शुड क्राई एंड देन यू नो समबडी शुड पुल हर अवे फ्रॉम द पायर एंड टेल हर दैट शी कैन यू नो स्टार्ट अ न्यू लाइफ बाय मैरिंग समवन एल्स. So there is Widori marriage also.
Widori marriage.
Then there is, yes, but then there is another, you know, certain particular hymn later, you know, later as in like in the later chapters of the Rig Veda, which says that a woman who commits sati will go to heaven. So there are all these contradictions, which also is fascinating. You know, why are these contradictions? Because Rig Veda was firstly orally composed. And a lot of the oral composition is happening outside the subcontinent from the place jahan se ye log aa rahe hain, step pastoralist log, hai na? To, aur uske baad jab ye likha jata hai, possibly from 6th century BC onwards, bahut time lapse ho gaya na, from 1500 BCE all the way to 6th century BCE. So there is a lot of addition, there is a lot of deletion, although ये सब ओरली पास हो रहा है. वी नो दिस बिकॉज अगर आप देखेंगे ऋग्वेदा कैसे लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन अ फैसिनेटिंग मैनर. दे विल से एक्स सेंट टोल्ड एक्स सेंट, हु टोल्ड एक्स सेंट, हु सेड दिस. सो दैट मींस दैट क्लियरली देयर इज अ ओरल रेपिटेशन ओवर एंड ओवर अगेन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन एंड यू नो यू हैव इट हियर. सो यू नो द ऋग्वेदा देयरफॉर also is a very good historical source for two different time periods. एक तो 1500 BCE का, and then जब वो लिखा जा रहा है 6th century BCE का, जिसमें morality बदल गई है, economy बदल गई. पहले pastoralist थे, अब agricultural हो गए हैं. तो वो दोनों की contradictions लेके रखता है. Possibly there was no sati when these people were pastoralists, but once they became agricultural and property rights came in, sati became an important idea. And therefore you have both these hymns, you know, coexisting. What the Rig Veda is also very good evidence of the fact that these people came from outside, because the Rig Veda does talk about a lot of geographical locations which are not in India. For example, Mount Mujavan, which is in the Pamir Mountains, jaha Soma milta hai, which is the intoxicating plant. And Soma also is one of the three major gods of the Rig Veda, Agni,
yeah,
Indra, and Soma. Right. So Mount Mujavan is from outside. And that also, you know, for us clarifies the route that they took, you know, from the step they came over here to the Pamir Mountains, stayed over here, you know, which is the BMAC entire complex, the Afghanistan, China area. And then from there, you know, entered India. So they found Soma over here and they talk about Soma, right? Saraswati also possibly a perennial river. Is the river Helmand in Afghanistan? Romila Thapar, etc. have made this, you know, connection. So therefore, the Rig Veda is a very good source for all of this, you know, historical information. I would certainly say this.
I'm hearing my voice being echoed by me. So
I don't have anything else on.
That's okay. Don't worry about it. So. There is this question from Amogh Siddhi that says, why is it called Brahmi script when Ashoka clearly mentions it is Bhamma script? Why Brahmins hesitate to say Dhamma script? Or Dhamma, I think he meant. There is no evidence of Vedic period. Why Brahmin historians try to fit it in history? Do we have any evidence that something called the Vedic period existed?
Well, we have this evidence certainly of, you know, this period when firstly the Vedas are being orally composed and then when they are being written. So usme definition hai, the when they are being orally composed, it's early Vedic, and when they are being written, it's late Vedic. So this is the basic differentiation between the two. It's called Vedic simply because, you know, the main event, according to many historians, is that the Vedas are being composed and then they are
composition of the Vedas. Okay.
Uh-huh. But otherwise, you can, you know, give this period a different name also. You know, you can say the pastoralist period and then you could say the urbanization period. Just mein do tarike ki urbanization. So academics have made that. So there is early urbanization, which is 900 BC to 500 BC. And then, you know, there is second urbanization when all these city-states come up. Mahajanpads, Magadha comes up and then Mauryan Empire comes up, so on. So that's the second, the more important phase of urbanization. So, aisa kuch nahi hai. We have to always call it Vedic period. It's just a term that has stuck. And, you know, we therefore have sort of continued with it. But you can also sort of, you know, not call it the Vedic period.
So, it's just a label that was put on it because people thought that the primary thing that happened in it was the composition of the Vedas. Isko kuch aur bhi
and
kaha
then
ja
the
sakta.
Writing of the Vedas. Correct.
Okay.
Correct. Absolutely.
Okay. सो गाइस आप लोग ने जो सवाल पूछे हैं इनमें से कई सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका सवाल लिया नहीं गया है तो आप लोग वीडियो को रिकॉर्डेड वर्जन को पूरा देख सकते हैं मुझे लगता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं डॉक्टर रुचिका को ज़्यादा समय तक अभी बिठा के रखना नहीं चाहता मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ जिसने भी सुपर चैट्स वगैरह भेजे हैं मैं उनको एक एक बार एक्नॉलेज कर देता हूँ Vinay, thank you for the 100 rupees. Vinay says two of my favorite people on the internet. Dhirubhai,
oh,
thank
nice.
You for being
thank
a member.
You.
Ashish, thank you for being a member for 2 months. Patient was declared cancer. Yeh kisi aur topic ke bare mein hai. Barnali, aapka bhi, thank you for the 100 rupees. Par yeh kisi aur topic ke bare mein. Iske bare mein agle hafte baat karenge. Ajay ka hai. Hello, Dr. Ruchika. How much of the language of the Indus Valley civilization is decoded and what is the methodology used to decode it? I think we have already talked about it. Unless you want to add something.
I would just say the language and script are two different things. So we would probably never know about the Indus Valley language. But the script, there is a good chance we might be able to, you know, break it or, you know, decode it.
Okay. Mithil, thank you for the 100 rupees. Mithil says, could you explain in brief how Marxist historiography exactly works?
Yes, I can.
Because this is kind of thrown around like an insult. Hai to Marxist hai. So what is it exactly? Marxist historiography क्या है?
So दो चीजें हैं. एक तो historiography होता है और एक होता है historical methodology. Historiography is basically the art of writing history. So like for example, you have colonial historiography, which is basically how the British people wrote our history. ऐसे Marxist historiography is how those people who were following what is called as historical materialism as a historical methodology wrote history, right? अब क्या होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इट्स बेसिकली एन अ पर्सपेक्टिव ऑफ और अ मेथोडोलॉजी ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री थ्रू द लेंस ऑफ जस्ट टू क्लासेस द बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियट दे थिंक दैट द एंटायर हिस्ट्री यू नो इज डिवाइडेड इनटू टू एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म मेथोडोलॉजी राइट इकोनॉमी प्लेज अ वेरी ह्यूज पार्ट सो अ लॉट ऑफ यू नो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डन इन दिस मार्क्सिस्ट थिंग एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी देयरफॉर देन वुड मीन अस लुकिंग एट हाउ दीज पीपल हु फॉलोड दिस मेथोडोलॉजी हैव रिटन हिस्ट्री दैट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरी राइट ये जो लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं इसको वो नहीं है वो गलत है लेफ्ट हैज अ वेरी डिफरेंट कॉनोटेशन बट द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स इज द वन हु गेव दिस आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड उससे फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया आया है तो मार्क्सिस्ट ये नाम हो गया दैट्स व्हाट बेसिकली इट मींस
सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अली अली थैंक यू फॉर द 100 रुपीस आर पाली स्क्रिप्ट राइटिंग्स फाउंड If Pali script is older than Sanskrit, then how can we say that the Vedas are older than any other scripture? मैं सवाल को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, but I think he's asking कि सबसे पहले तो संस्कृत ज़्यादा पुरानी है या पाली?
Okay. Is that the only question?
दूसरा ये है कि अगर संस्कृत in written form has been discovered after Pali, then how do we know that Sanskrit is older than Pali?
Yeah, so two things. One is Sanskrit older than Pali? Most probably yes. And I'm saying most probably yes is because it's very difficult to, you know, exactly date languages, because languages flow and languages very quickly take on, you know, other things, you know, local influences, etc. So बड़ी जल्दी उनका मिंगलिंग हो जाती है. तो एग्जैक्ट आप ऐसे डेट नहीं दे सकते. यू कैन प्रोबेबली गिव अ बॉल पार्क और सेंचुरीज. सो संस्कृत इज क्लियरली द फर्स्ट, यू नो, इज एन ओल्डर लैंग्वेज देन पाली फॉर श्योर. वी आर वेरी सर्टन अबाउट दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, यू नो, द फर्स्ट कॉम्पोजिशंस इन संस्कृत वर ओल्डर देन द फर्स्ट कॉम्पोजिशंस इन पाली. सो वेदास वी नो वर बीइंग कंपोज्ड इन 1500 BC. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज वेदा में खुद ही एविडेंस है कि वो कहाँ से आए एंड वो जब आ रहे हैं. सो वी नो दैट पीरियड इज 1500 BC. तो इसीलिए हमको पता है कि संस्कृत तब से यहाँ है. इनफैक्ट इंडिया को छोड़ दो, मिट्टानी करके एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है इस एरिया में, सेम एरिया में जहां से आर्यंस आए थे. वो भी संस्कृत यूज करते हैं. इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज संस्कृत. आर्यंस आर सेकेंड, राइट? ये लोग की इंस्क्रिप्शन वगैरह में लिखा हुआ है, यू नो, पीपल लाइक सुबंधु एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज पीपल आर मेंशनड एज ग्रेट किंग्स. सो दे आर द फर्स्ट टू यूज संस्कृत. सो संस्कृत क्लियरली प्रिडेट्स पाली. व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? सॉरी.
इफ रिटन एविडेंस ऑफ
हाँ, बट
पाली,
व्हाट इज, हाँ, बट व्हाट इज
अगर हमको संस्कृत
फैसिनेटिंग इज,
रिटन फॉर्म में पाली के बाद मिली है, तो हम ये
बाद
कैसे कह
मिलती है.
सकते हैं कि
सो
संस्कृत
व्हाट इज
पहले की?
फैसिनेटिंग, हाँ, सो व्हाट इज फैसिनेटिंग इज दैट अ लॉट ऑफ राइटिंग ऑन ऑन इंस्क्रिप्शंस एटसेट्रा फर्स्ट हैपेंस, यू नो, नॉट इन संस्कृत. यू नो, इट हैपेंस इन दी स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी एटसेट्रा. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड यू नो, बट दैट डज नॉट मीन कि पहले ये लैंग्वेज यूज नहीं है. स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसिएशन आप समझे. जो स्क्रिप्ट का सबसे पहले यूज हो रहा है वो इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी वगैरह का यूज हो रहा है. बट दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो लैंग्वेज बिफोर दैट व्हिच इज बीइंग स्पोकन एंड यू नो थिंग्स आर बीइंग कंपोज्ड इन इट. देयर इज क्लियरली लैंग्वेज बिफोर दैट एंड दैट इज संस्कृत. वो लिखी बाद में गई पर वो बोली पहले गई.
अच्छा,
ब्राह्मी लिखी पहले गई एंड देन यू नो पाली एटसेट्रा बोली बाद में, संस्कृत से
तो
बाद में.
ये सवाल यहाँ लाइव स्ट्रीम में कई बार उठता रहता है पाली और संस्कृत के बारे में, तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा डाउट में हूँ. सो थैंक यू फॉर
राइट.
थ्रोइंग सम लाइट ऑन दैट. उसके बाद है, निशांत सेज, निश ऑफ अंत, आई एम गेसिंग योर नेम इज निशांत सेज. निशांत, थैंक यू फॉर द 100 रुपीज. डज द रूपकुंड लेक इन द हिमालयाज एंड इट्स फाइंडिंग्स रिलेट इन एनी वे टू द आर्यन माइग्रेशन? आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज अबाउट.
इट्स दिस वेरी नाइस अर्बन लेजेंड. रूपकुंड लेक में बड़े सारे स्केलेटल फाइंडिंग्स हैं.
हाँ, वो पता है मुझे, पर वो है क्या?
वी आल्सो वी आर नॉट वेरी श्योर, यू नो,
ओके.
व्हाट बेसिकली इट इज, बट इट्स possibly got not a lot to do with the Aryan migration. We don't, you know, have that connect with the Aryan migration, but it is a fascinating thing in itself. I mean, it certainly makes for great stories. So, you know, I don't think there is any connect between the Aryan migration and the Rupkun.
Okay, cool. So that is kind of sort of all for everyone in the chat. Wait, धीरू भाई का कोई था क्वेश्चन क्या? नहीं धीरू भाई, आपका क्वेश्चन यहाँ सुपर चैट में नहीं दिख रहा है कुछ. आई डोंट नो वेयर इट वेंट, बट इन एनी केस, डॉक्टर रुचिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बिफोर वी गो
थैंक यू
वन
सो मच
फाइनल
फॉर
थिंग
हैविंग मी.
बिफोर वी गो वन फाइनल थिंग, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट इंडस वैली के लोग कहाँ गए, बट इंडस वैली के लोग कहाँ से आए, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी है क्या?
यहीं से आए. मेहरगढ़ है एक, यू नो, व्हिच इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रेसिडेंट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. मेहरगढ़ वाज दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर वी हैव द फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैपनिंग. वी हैव, यू नो, प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ टू इट. सो मेहरगढ़ इज द मदर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो टू स्पीक. वहीं से ये लोग फिर देन दे वेंट टू इंडस वैली साइट्स. मेहरगढ़ इज इन दिस एरिया, अफगानिस्तान एरिया. एंड इट्स अ ब्रिलियंट साइट. इट हैज वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ पॉटरी दैट वी फाइंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो वी आर वेरी श्योर दैट दिस इज वेर दीज पीपल केम फ्रॉम. मेहरगढ़ से पहले कहाँ आए, वी आर नॉट वेरी श्योर.
ओके,
बट इंडस वैली लोग फॉर, यू नो, फॉर द नोन हिस्ट्री वर हियर स्टार्टिंग फ्रॉम मेहरगढ़.
ओके, सो मुझे धीरू भाई का कमेंट मिल गया है. आई थिंक दिस इज मोर अ क्वेश्चन फॉर मी देन फॉर रुचिका जी. हैव यू रेड अर्ली इंडियंस बुक बाय टोनी जोसेफ? इट एक्सप्लेन्स हाउ हड़प्पन्स माइग्रेटेड अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट एंड सेटल इन केरला तमिलनाडु यूजिंग डीएनए एंड लिंग्विस्टिक एविडेंस. यस धीरू भाई, आई हैव रेड इट. थैंक यू फॉर आस्किंग. आई होप, आई थिंक रुचिका जी ने भी पढ़ा होगा इसको.
मैं नहीं पढ़ा है, बट
नहीं पढ़ा है. ओके,
आई नो, आई मीन आई नो व्हाट हिज व्हाट टोनी जोसेफ्स सेंट्रल आर्गुमेंट इज, बट मैंने नहीं पढ़ी वो किताब, सॉरी.
डू यू एग्री विद इट?
वेल, आई डोंट नो अबाउट द लिंग्विस्टिक एविडेंस, बट आई विल आल्सो नॉट, यू नो, कंप्लीटली ट्रैश दिस आइडिया की कनेक्ट है, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर का बिटवीन दीज टू. So there is clearly a connect between the Dravid and Nad or the South India area and, you know, the Indus Valley civilization. There is no denying that. Ab uska kitna evidence hai, how compelling it is and all, that we'll have to, you know, sort of really hone down on technicalities and come to that.
Okay. So cool. Ruchika ji, I will not keep you any longer. Thank you so much for doing this. Thank you for coming and answering this interrogation about...
Thank you so much for having me. I had a lot of fun chatting. I always love talking about history, so मुझे तो बहुत मजा आता है.
Definitely. Then you are, मतलब perhaps volunteering to appear here again and answer more questions.
I would love to have another chat. Sure.
Great. Thank you very much, and I will see you next time. I will put a link to Ruchika ji's YouTube channel and Instagram handle in the description. Everyone, please follow her and consume her content and comment on her content, etc. She is one of the few historically accurate voices in the Indian social media scene, and we should definitely encourage her. So, yeah, thank you.
Thank you so much.
So, what we are going to do is that I am going to go through the paid chats that came so that I can acknowledge everyone. And then we are going to end today's live stream. 1:23 ऑलरेडी हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू आने के लिए. नादिर, थैंक यू फॉर द 100 rupees. द मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ आर सिविलाइजेशन इज सो ब्यूटिफुल एज कम्पेयर टू बींग प्योर. मल्टीपल ऑरिजिन, ओके, थैंक यू नादिर. अमोघ सेज, डिड नॉट आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, वाई यू आर सेइंग इट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट व्हेन अशोक हैज क्लियरली मेंशन्ड इट इज धम्मा स्क्रिप्ट. अमोघ, आई थिंक दिस मे जस्ट बी अ मैटर ऑफ नेम्स. जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कहा, यह बस एक नाम है. अगर उस पीरियड को कोई और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो. हो सकता है जिन्होंने नाम दिया हो उन्होंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दिया हो. स्क्रिप्ट वही है, उसको क्या बोलते हो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. निशान, थैंक यू फॉर द 100 rupees. रूपकुंड के बारे में ये पढ़ लिया. अनव्रत, थैंक यू फॉर द 100 rupees. अली, थैंक यू फॉर द 100 rupees. एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू. ये कौन है? आर, थैंक यू फॉर द 100 rupees. हड़प्पन पीपल का IQ लेवल बहुत हाई लग रहा है, जिनका स्क्रिप्ट आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाए. देवर एलियंस, हड़प्पाइंस. अरे भैया, भाषा का बेसिक पर्पस होता है लोगों को समझ में आना. अगर ये भाषा थी भी तो उसके बारे में जो बेसिक चीज सच होनी चाहिए कि वो समझ में आ रहा है. अगर कोई भाषा बनाए और वो किसी की समझ में ना आए, देन आर दे रियली स्मार्ट? थिंक अबाउट इट. वो जीनियस होते हैं अगर उनकी भाषा समझ में आती. मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीनियस नहीं है, शायद हम मूर्ख हैं. मे बी दैट इज द होल पॉइंट, राइट? सो थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हेल्प्ड मॉडरेट टुडे. आज चैट में बहुत सारे चूत है जिनको साफ करने में आप लोगों ने मदद की. थैंक यू टू ऑल द मॉडरेटर्स. मैं आपके नाम नहीं लूंगा, बट आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड ऑन अ सेशन लाइक दिस इट्स रियली अप्रिशिएटेड दैट नॉट ओनली द चैट अ क्लीन स्पेस, इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बहुत से लोग अजीबोगरीब चीजें चिपका रहे थे. सो मैं कुछ और चैट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं. हैरी, विजेंद्र मोहंती PhD फेल्ड टू क्रिएट इन्वेंशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेदांता प्रोपेगेंडा. व्हाट? PhD फेल्ड? हु फेल्ड? आर यू सेइंग आई एम अ PhD फेल? आई नेवर इवन ट्राइड फॉर अ PhD. व्हाट, वेयर डू दिस गाइस कम फ्रॉम? Taranga says, sadly, so many sexist and casteist people in chat today. Yeah, this was anticipated, but the mods did a good job. Ashok says, JNU ka naam kharab kar diya. Ashok, behave. Jatrecon says, thank you for the program. Satyamev Jayate says, she is not historically accurate, that you can totally contest any of her views with sources. That's perfectly okay. Ouroboro says, very good discussion. The chat, not so much. Yeah, the chat was quite crappy today. In fact, chat is getting crappier with every passing day. मुझे लगता है कि at some point of time मैं चैट को members only कर दूंगा, ताकि जो members हैं सिर्फ वही चैट में participate कर सके. बाकी लोग देख सकते हैं, पर अगर इस प्रकार के views आप लोगों को चैट में चिपकाने हैं तो मैं क्या करूं, मुझे हटाना ही पड़ेगा आपको. भूपेंद्र चौधरी says, love you भीमा भाई. भूपेंद्र, love you too, thank you. Shekhar says, if right wing people were half as educated as Ruchika, we would live in peace. It's not about education, it's about motivations. It's about the desire for cultural hegemony that they seek to impose through their imagined academic, you know, proficiency. And he says, mods should be more strict. I agree, mods should be more strict. But they're nice people, what to do? Humanity says, mujhe dono side ke historians confuse kar dete hain. Humanity first always look at the sources that people are citing. Interpretations to phir bhi aate rahenge. Mahi, thank you for the 179 rupees, much appreciated. Sagar says, Vimo's subscription is capitalism. No, it's not capitalism. Capitalism, this is a worker taking control of the means of production. Look at it that way. Lasya says, oh no, please, can we not just have more mods? Can we not just have more mods? Okay, full stop dalna bhul gaye the. I get it. We will think about it. We'll think about it. At least subscriber only to kar sakta hu, members only na karo to bhi. Vimo, can you recommend some books on Indus Valley Civilization? I think you should definitely pick up Tony Joseph's book that Dhirubhai talked about, and there are other books also. I think any book about Indus Valley Civilization that is, see, the thing is this, tumko ek aise topic ke bare mein kuch books milengi jinme widely accepted theories ke bare mein mentioned hai, and this is common historical knowledge. Unless someone is saying Indus Valley ke log Mars se aaye the, us prakar ki books nahi. Just pick up any book by any reputed historian about ancient India, and you will find a decent chapter on Indus Valley civilization. If it has been written recently, it will contain everything that is important enough to mention. Drogi says, what are the plans for next week? I don't know. Ye cheez ek hone wali hai ki I am not sure ki is Wednesday aur aane wale Saturday ko live stream ho payega nahi, because I'm traveling. So if that does not happen, I will see you agle Saturday ke baad wale Saturday. Agle Saturday main yahan pe nahi hu, main travel kar raha hu. So us Saturday ko mujhe maaf kijiye. Is Wednesday live stream hoga ya nahi, ye main members ko announce karke bata dunga community tab mein. Check kar lena Wednesday subah ya fir Tuesday sham ko. और अगर होगा तो बात करेंगे वेडनेसडे को मेंबर्स के साथ, और अगर नहीं होगा तो उनके साथ भी अगले के अगले सैटरडे बात होगी. कूल, या फिर अगले सैटरडे के बाद वाले वेडनेसडे. सैटरडे के बाद वाले वेडनेसडे हो पाएगी? वेट, आज है सैटरडे. हाँ, हो जाएगी. अगले सैटरडे के बाद वाले वेडनेसडे पर हो जाएगी. इन एनी केस, मैं कम्युनिटी टैब में प्लान पब्लिश करके सब क्लियर कर दूंगा. So cool, आज का लाइव स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. दिस वाज अ फन कॉन्वर्सेशन, एंड आई होप टू सी यू नॉट नेक्स्ट सैटरडे बट द सैटरडे आफ्टर दैट, एंड वी विल टॉक मोर व्हेनेवर वी मीट नेक्स्ट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय. आई विल सी यू.